हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वहीं दूसरी ओर देर रात को अरमान के पास एक अनजान का फ़ोन आया था, जिसने उसे ये कहकर चौंका दिया था कि अनुराधा का खून तो आप कर ही चुके हो अरमान ठाकुर, पर आप ये नहीं जानते आपकी गुनाहों की कीमत आपकी बहन चुका रही है। ये सुनकर अरमान का तन बदन जलने लगा था और वो उसी समय ठाकुर मेंशन के लिए निकल चुका था। वहीं दूसरी ओर अरमान को ये सब बताकर सुधाकर जी ने चैन की सांस ली थी। उसने अनुराधा का पीछा लोनावला तक किया था और वो अनुराधा को अरमान के साथ रात बिताते हुए देख चुका था और साथ ही साथ वो अरमान के उसका मर्डर करते हुए भी देख चुका था। सुधाकर जी अनुराधा को देखने के बाद उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था। एक यही रीज़न था कि वो अनुराधा के जिस्म पर अरमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया था, लेकिन वो एक छोटा आदमी था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अरमान ठाकुर से टकरा सके, लेकिन वो अरमान को इतनी चैन और सुकून से भी नहीं जीने देना चाहता था। इसलिए उसने अरमान की बहन की खबर अरमान को दे दी थी और वो खुद को काफ़ी ज़्यादा हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। अरमान जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा था राजवीर अपनी मनमानी करने के बाद उसे कपड़े पहना रहा था। राजवीर ने जैसे ही दरवाजे पर अरमान को खड़े हुए देखा तो उसके होश उड़ गए थे और वो एकदम सकपका गया था, और वो मेहर का कुर्ता जो उसने उसके गले में डाल रखा था वो उसे आधा अधूरा छोड़कर अपने कमरे में चला गया था, और मेहर ऐसे ही बेजान सी खड़ी हुई थीं। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि वो अपना वो कुर्ता नीचे कर ले, वो उसी तरह से उसके गले में अटका हुआ था। अरमान आगे बढ़ा और वो अपनी बहन का कुर्ता नीचे करने लगा था, क्योंकि कुर्ता गले में अटकने की वजह से उसका हल्का हल्का पेट दिखाई दे रहा था। अरमान ने जैसे ही उसका कुर्ता नीचे किया और उसने मेहर का चेहरा देखा तो वो डर के मारे नीचे गिर पड़ा था। मेहर का चेहरा उस वक्त बड़ा ही डरावना लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो किसी हड्डियों के ढांचे को वहां खड़ा कर दिया गया था। उसका ऊपरी होंठ पूरी तरह से सूजा हुआ था और उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े भयानक काले काले घेरे हो गए थे। अगर कोई छोटा बच्चा उस वक्त मेहर को देख ले तो वो पक्का भूत समझकर उससे डर सकता था। वो बहुत बुरी लग रही थी। अरमान का दिल उसे इस हालत में देखकर रोने लगा था और उसे मेहर में जोया नजर आने लगी थी, क्योंकि एक टाइम था जब उन दोनों भाइयों ने भी जोया की हालत मेहर जैसी कर दी थी, और आज अपनी बहन की ये हालत देखकर अरमान का दिल रोने लगा था। मेहर ने भी कुछ पल खाली खाली नज़रों से अपने भाई की ओर देखा और फिर उसी बदहवास सी हालत में अपने कमरे की ओर जाने लगी थी। अरमान उसे ही देख रहा था, और जैसे ही मेहर ने सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखा वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गईं। अरमान तड़प कर उसके पास जा पहुंचा और उसे सहारा देकर उठाने लगा था। मेहर ने अरमान की ओर एक नज़र देखा और मुस्कुराने लगीं। अरमान भी उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन तभी अचानक मेहर ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अरमान चिल्लाने लगा था, आप ही, और उसने जल्दी से तेजा के गाड़ी निकालने को कहा था। अरमान की गाड़ी सड़कों पर दौड़ती हुई हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गई थी। जोया ने उस बीच पर खुद को जख्मी कर लिया था। अबीर उसे समझाने की और संभालने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा था। अबीर जोया के घुटनों के पास बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। इतने दर्द में अबीर ने आज तक किसी को नहीं देखा था। उसका अपना दर्द भी जोया के दर्द के आगे कुछ नहीं था। अबीर ने जोया को बड़े ही प्यार से कहा, जोया क्या हुआ है, किसने आपको तकलीफ देने की जुर्रत की है, बस एक बार, केवल एक बार आप मुझे उसका नाम बता दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको तकलीफ देने की मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। जोया ने उसे कुछ पल देखा और बोली, उसका नाम अबीर राठौड़ है। अबीर जोया के मुंह से अपना नाम सुनकर सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा था। तब जोया ने कहा, आप ऐसे हैरान क्यों हो रहे हैं, आपको क्या लगा कि आप मुझसे छुपाओगे तो मुझे आपका सच पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं मिस्टर अबीर राठौड़, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं पहले वाली गांव की सीधी साधी जोया नहीं हूँ, मैं अब अपने दुश्मनों को जवाब देना अच्छी तरह से जानती हूँ। ये खून देख रहे हो ना, ये तो बस शुरुआत है, अब आप आगे आगे देखिए कि मैं किस तरह से तुम सबको इस दुनिया में ही जहन्नुम का एहसास कराऊंगी। अबीर जोया की बातें सुनकर शॉक्ड पर शॉक्ड हुए जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जोया किसके बारे में बात कर रही है और क्यों, और वो उसे किसके साथ मिला हुआ समझ रही है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब उसने जोया से साफ साफ कहा था, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो और किसके किससे बदला लेना है तुम्हें? तुम मुझे बताओ बात क्या है। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारा जो भी बदला होगा, कोई भी तुम्हारा दुश्मन होगा, वो मेरा भी दुश्मन होगा। और मुझे बताओ कौन है तुम्हारा दुश्मन, बस एक बार बताओ, फिर देखो ये अबीर राठौड़ क्या करता है। वहीं अरमान मेहर के लेकर हॉस्पिटल पहुँच चुका था और उसने पूरे रास्ते अपनी गोद में मेहर का सर रख रखा था। जल्दी ही मेहर को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। अरमान आज जिंदगी में पहली बार इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसे कभी नहीं सोचा था उसकी जिंदगी में ऐसा भी कोई दिन आएगा। अरमान ने तेजा को अपने पास बुलाया और बोला, मुझे राजवीर एक घंटे के अंदर ही अंदर मेरे सामने चाहिए। और एक बात याद रखना, अगर एक घंटे के अंदर अंदर तुम उसे नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अरमान ने सख्त लहजे में तेजा को धमकी दी थी। तेजा जल्दी से राजवीर की तलाश में निकल चुका था। वहीं राजवीर को अंदाज़ा हो चुका था कि अरमान ज़रूर अपने आदमी उसके पीछे भेजेगा, इसलिए उसने अपने बचाव का रास्ता निकाल लिया था। और तेजा के उस तक पहुंचने से पहले पहले वो अपने आप एक मुस्कुराहट के साथ हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गया था। वहीं अरमान बेचैनी से इमरजेंसी वार्ड के आगे टहल रहा था और मेहर को ट्रीट कर रही डॉक्टर बाहर निकली। अरमान जल्दी से उनके पास पहुंच गया और तड़प कर बोला, क्या हुआ है मेरी बहन को, कैसी है वो? तब बदले में उस डॉक्टर ने अरमान को ऊपर से लेके नीचे तक देखा और बोली, क्या वाकई आप उस लड़की के भाई हैं? तब अरमान, जी हाँ, मैं अरमान ठाकुर उसका भाई हूँ, अरमान अटक अटक कर बोला था। तब उस डॉक्टर ने कहा, मिस्टर ठाकुर, आपकी बहन 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उसके बाद भी लगातार पिछले करीब 1 महीने से उसका बलात्कार होता आया है और अब तो पिछले 8 दिनों से उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं है। शायद इसी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। वो केवल पानी और जूस पर जिंदा थी, जिसे भी शायद जबरदस्ती उसके मुँह में डाला गया होगा। और आई एम सॉरी मिस्टर ठाकुर, ये एक पुलिस केस है तो हमें पुलिस में कम्प्लेन करनी होगी। जैसे जैसे डॉक्टर मेहर की हालत के बारे में बता रही थी, वैसे वैसे ही उसका कमर का जिस्म बेजान सा होता जा रहा था। वहीं अबीर राठौर जोया से कह रहा था कि एक बार बताओ कौन है तुम्हारा दुश्मन, फिर देखो ये अबीर राठौर क्या करता है।
ऐसा कहते हुए अबीर ने अपने हाथ जोया के कंधों पर जमा लिए थे। जोया का दिल में नफरत भर गई थी और उसने एक झटके से अबीर के दोनों हाथ झटक दिए और अपने बैग से वो गन निकालकर अबीर के माथे पर लगा दी थी। अबीर उसे हैरानी से देखने लगा था और बिना डरे एकदम निडर होकर उसके सामने खड़ा हो गया था। जोया ने कहा, बस अबीर राठौड़, बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बस मैं अब तुम्हारी और बकवास नहीं सुनूंगी, और बकवास करने के लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर जोया ने गन के ट्रिगर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और बस ट्रिगर दबने ही वाला था कि तभी